તારીખ 10/7/1993 શ્રી પરમાગમસાર બોલ નંબર 131 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું હૈદરાબાદમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 61
શ્રી પરમાગમસાર પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના વચનામૃત 131 સમયસાર ને ગાથા 17-18 ના પ્રવચનો માંથી આ વચનામર છે. સમયસાર ની 17-18 ગાથામાં આચાર્ય મહારાજે એક વાત મૂળ સૂત્રમાં પણ લીધી છે, કુંદાચાર્ય દેવે અને અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવે ટીકામાં પણ એ વાત લીધી છે કે જે મોક્ષાર્થી જીવ છે એ પ્રથમ આત્માને જાણે, પછી એની શ્રદ્ધા કરે અને પછી એનું અનુસરણ કરીને પોતાને આત્મલાભને પ્રાપ્ત કરે. હવે મોક્ષાર્થી શબ્દ લેવાનું કારણ શું? સમય સાર કી 17-18 ગાથા કા જો પ્રવચન હૈ ઉસમે છે એ 131 નંબર કા વચનામૃત ગુરુદેવ કા કોઈ વિષય પર સિલેક્ટ કિયા હૈ, પસંદ કિયા હુઆ હૈ, સંપાદિત કિયા હુઆ હૈ. તો વો 17-18 ગાથા મેં વિષય વો ચલા હૈ કે જો મોક્ષાર્થી હૈ, મોખ કામેણ ऐसा शब्द है मागधी में कुंदकुंद आचार्य देव का जो शब्द है वो मोक्ष कामेण, मोक्ष की कामना जिसको है, कामना कहो, भावना कहो या मोक्ष का ध्येय कहो, मोक्ष का लक्ष्य कहो, उसी को मोक्षार्थी कहते हैं. हैदराबाद में तो इसे बहुत चला है कि पूर्णता के लक्ष्य वाले को ही शुरुआत होती है. ऐसा जो सूत्र गुरुदेव श्री ने दिया है वही सूत्र की बात कुंदकुंद आचार्य देव 17-18 गाथा में कहते हैं कि जो मोक्षार्थी है वो आत्मा को पहले जाने, जान करके उसकी श्रद्धा करे और श्रद्धा और ज्ञान पूर्वक उनका आचरण करके वो मोक्ष की, उसको मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है और मोक्ष मार्ग से उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी. जिसको जिसके कामना है उसको मोक्ष की तो कामना है उसको. तो क्या बात लिया कि एक तो पहले लिया मोक्षार्थी जीव की भूमिका ली, बिना मोक्षार्थी पना किसी को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होगी, मैंने पूर्व शर्त हो गई वो. तो वहां भेद ज्ञान का विषय चला है. तो भेद ज्ञान किसको होगा? कि जो मोक्षार्थी होगा उसको भेद ज्ञान होगा, जो मोक्षार्थी नहीं होगा उसके लिए तो भेद ज्ञान का कोई पुरुषार्थ चलने का प्रयास हो सकता नहीं, हो सकेगा भी नहीं. ये कहने का तात्पर्य है. इतनी बात कह करके फिर आचार्य महाराज ने एक और बात विशिष्ट रूप से इस दो गाथा की टीका में विशिष्ट रूप से कही है एक बात, और वो बात मोक्षार्थी को कही है, जो ज्ञानी नहीं है किंतु अज्ञानी है उसको कही है. दूसरा कि जो बात कही है वो सभी अज्ञानी को लागू पड़ती है ऐसी कही है, सर्वसाधारण जीव को लागू पड़ती है उसको कही है. उसमें ऐसा कहा है कि यह अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सभी को निरंतर, सदा मैंने निरंतर अनुभव में आ ही रहा है, किंतु इसका लक्ष्य अपने आप पर नहीं है, दूसरे पर इसका लक्ष्य है तो उसको वो अनुभव मालूम नहीं पड़ता है. वो अनुभव उसको मालूम नहीं पड़ता है कि मुझे क्या अनुभव में आ रहा है। उसका उसको एक झूठा कल्पना, झूठी कल्पना होती है। कल्पना मीन्स मतलब ही झूठी बात है कि मुझे राग अनुभव में आता है, मुझे राग का विषय जो पदार्थ है इसका अनुभव हो रहा है, ठंडी का गर्मी का, ऐसे कुछ न कुछ। तो ये इसका मिथ्या अनुभव मैंने झूठ का अनुभव है। उस पर ये बात गुरुदेव से कहा वचनामृत चलेगा, इस बात पर चलेगा। क्या कहते हैं गुरुदेव, देखें ज्ञानी की दशा में, ज्ञान की दशा में, यानी नहीं ज्ञान की दशा में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आता है, फिर भी उसको तू क्यों नहीं जानता है? तू जानता क्यों नहीं है? क्या कहा? ज्ञानी को नहीं कहा, जो भी समय सार सुनने को आया है ऐसे पात्र जीव को कहा है। भले ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है। जैसे कोई दरिद्री को ऐसा कहे कि तुम्हारे घर में ही संपत्ति है, तुमको क्यों पता नहीं है तुम्हारे घर में जो संपत्ति पड़ी है? तुम घर घर पे जाकर के क्यों भीख मांगता हो? तो उनको ऐसा लगना चाहिए कि अच्छा, मेरे घर में संपत्ति तुमने देखी, मुझे तो पता ही नहीं था। अगर मेरे घर में संपत्ति होगी, मुझे मिल जाएगी, तो मैं आज से ही भीख मांगना छोड़ दूंगा। ऐसा कहेगा या ऐसा कहेगा कि नहीं नहीं मेरे घर में तो संपत्ति है ही नहीं, तुम झूठ बोलता है, मुझे भीख मांगने दो। ऐसा कहेगा? क्या कहेगा? हाँ, ऐसा कहेगा क्या? मेरे घर में संपत्ति हो तो मैं कैसे भीख मांगता, है ही नहीं, तुम झूठ बोलता है, तुमको खबर नहीं है मेरे घर में कुछ है ही नहीं, मुझे भीख मांगने दो, मुझे तो भीख ही मांगनी है। तो हमको हमारे गुरु पर क्यों भरोसा नहीं है? हमारे भगवान पर भरोसा क्यों नहीं है? गुरु वचन कहो या जिन वचन कहो, वो तो एक ही बात है, कोई तो अलग अलग तो बात नहीं। जो जिनेन्द्र परमात्मा ने जो बात कही वही हमारा गुरु ने कही, तो बात तो एक ही है। हम क्यों भरोसा नहीं करते? हम व्यापार करते तो भी किसी पर भरोसा रखते, माल उधार देते कि नहीं देते? चलो भाई, आदमी तो ठीक लगता है, अपना पैसा जाने वाला नहीं है, भले ही कोई थोड़ा जान पहचान तो है अपने, तो उनको उधार देने में अपने को आपत्ति नहीं। और बिल्कुल अनजान आदमी हो, कितना भी अपटूडेट होकर आवे, नहीं देंगे। तो जानते नहीं, तुमको देखा ही नहीं कभी जिंदगी में, कैसे बिना पैसा कैसे माल देंगे? पर थोड़ा भी परिचित होंगे तो विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे? तो हम हमारे गुरु पर विश्वास क्यों नहीं करते? विश्वास कब किया जाता है? जब प्रामाणिकता दिखने में आवे तब। किस पर विश्वास करते हैं? बनिए हैं, व्यापारी है, किस पर विश्वास करते हैं? पैसे वाला देखकर विश्वास नहीं करते, क्योंकि ऐसे भी लोग होते हैं कि पैसे होते हुए भी दूसरे को देते नहीं, माल ले जाते और पैसा नहीं देते। ऐसे भी लोग होते हैं, को लेना जानते देना नहीं जानते, ऐसे भी लोग होते हैं। और गरीब व्यापारी कम ताकत वाला होने पर भी प्रामाणिक होते हैं, बराबर पैसे टाइम पर दे भी देते हैं। विश्वास किस पर करेंगे जो प्रामाणिक है? तो क्या हमारे गुरु प्रामाणिक नहीं है क्या? जब विश्वास करने का एक व्यवहार है, विश्वास करना तो एक व्यवहार है, तो क्या हमारे गुरु प्रमाणिक नहीं है? हमारे जिनेन्द्र परमात्मा प्रमाणिक नहीं है क्या? अब क्यों विश्वास करते इस बात पर? हैं? भरोसा तो अधूरा पूरा नहीं आता है, विश्वास में दो बात नहीं बनती, या तो हाँ या तो ना, दो बात नहीं होती उसमें, उसमें परसेंटेज नहीं होता है। तो पहले तो ये पक्का करना चाहिए कि हमारे गुरु विश्वास करने लायक है या नहीं, पहले ये पक्का करो। जब ये विश्वास करने लायक है तो इनकी सब बात पर विश्वास करो। हम तो शुरू शुरू में नए नए स्वर्गढ़ आए तो इस वक्त आपस में हमारे आत्मार्थी भाइयों से चर्चा करते थे, तो ऐसे करते थे कि अगर हमारे गुरु ऐसा कहे दिन में 12 बजे कि ये रात का 12 बजा है, अरे वहां तक तो ठीक है, वो ये कहे कि रात नहीं है, ये चंद्रमा नहीं है, वो तो अमावस्या की रात है, क्या तुमको जो दिखता है वो सूर्य भी नहीं चंद्रमा भी नहीं, तुम धोखे में हो, ये तो अमावस्या की रात है, अंधेरी है, क्या करना है, मानना कि नहीं मानना, तुम प्रश्न करते आपस में, शंका करना कि नहीं करना गुरु की बात पर, आपस में प्रश्न पूछते थे हम लोग, नहीं करना चाहिए। हाँ, इतना विश्वास करो, इतना विश्वास करो, पहले परीक्षा करो, जितनी करना हो तुम शुरू से परीक्षा कर लो, बाकी परीक्षा करने के बाद पक्का हो गया कि नहीं ये हमारे गुरु प्रमाणिक है, फिर बात खत्म, फिर उस पर उतना विश्वास करना है जो भी कहे वो हमारे लिए परमेश्वर का वचन है, परमात्मा का वचन है, उतना विश्वास करना चाहिए। जी कर सकता है, दर्दी डॉक्टर की परीक्षा करता है या नहीं करता है, क्या मेडिकल कॉलेज में गया कोई दर्दी, आपको दर्द होता है और कोई गंभीर समस्या लगती है तो हम एक डॉक्टर को नहीं बुलाते हैं, 4-6 डॉक्टर को बुला लेते कभी कभी, ये क्या हो गया, अभी तो बात करते थे, अभी बेशुद्ध हो गया आदमी, तो 2-3-4 को बुला लो, अभी अभी इसको भी टेलीफोन करो, इसको भी करो, इसको भी करो, 4 डॉक्टर को बुला करके इसकी दवा करना है, इसकी वो कौन नक्की करता है, दर्दी करता है या डॉक्टर नक्की करता है, कौन करता है, चारों का अलग अलग मत हो गया समझो, चारों का एक निदान नहीं है, किसकी दवा करना कौन नक्की करेगा, दर्दी नक्की करेगा। तो ये गुरु शिष्य का संबंध तो वैद्य और मरीज जैसा ही है, क्या हमारे जो गुरु है वो तो सदगुरु वैद्य सुजान, कैसा है सदगुरु वैद्य सुजान, और हम लोग तो दर्दी है, पहले तो परीक्षा करके विश्वास होगा और परीक्षा करेंगे तभी भक्ति आएगी सच्ची, वरना तो जो भक्ति है वो खर खर भक्ति नहीं है, आज भक्ति करेंगे कल भक्ति नहीं करेंगे, कल कहेंगे कि उनकी बात ठीक नहीं है तो आज भक्ति हो गई कि नहीं होगी, आज कहेंगे कि इनकी बात बराबर है कल कहेंगे कि वो बात बराबर थी लेकिन वो बराबर नहीं है तो भक्ति कहाँ रही, ऐ भक्ति होगी कि नहीं होगी, भक्ति होगी। इसलिए भक्ति भी बिना जान पहचान हो, भक्ति क्या चीज है, बहुमान है, बहुमान कहाँ से आता है, बिना समझे आता है या समझ करके आता है, कोई कहे कि बिना समझे भी आता है तो वो सच्चा नहीं है, वो सच्चा बहुमान नहीं है, और समझ करके जो आता है वो कभी जाने वाला नहीं है, ऐसा समझ करके काम करना, संसार के कारोबार में तो बिना समझे एक काम नहीं करते अपन, 10 रुपया भी किसी को नहीं दे देते, रस्ते में चलते आदमी को दे देते क्या, पहचान वाले तो 100 दे देते, बिना पहचान वाले तो 10 के नोट भी नहीं देंगे, तो काम तो समझदारी से लेना। तो जो मुमुक्षु है वो तो दर्दी है, मरीज है, उनको अशांति का रोग है, शांति नहीं मिल रही है, सुख नहीं मिल रहा है, तो सुख शांति के लिए वो कहाँ जाता है, कि जिसके पास सुख शांति का रास्ता है, इलाज है, जो इसको अच्छी तरह जानता है उसके पास वो जाता है कि हमको दिखाओ रास्ता, हमें चलना है सुख शांति के रास्ते पे। अच्छा, जरूरत हो तो खुद ना जाने पड़ेगा। मैं हैदराबाद क्यों आए, जरूरत पड़ी तो हैदराबाद आए क्या? ये तो निजाम का स्टेट है, मुसलमान का गांव है, हम क्यों इधर आए हिंदू लोग? हमको जरूरत पड़ी इसलिए आए। हमारा वतन तो कहीं है, आप कच्छ में हैं, हम सौराष्ट्र के हैं, तो 800-900 हजार माइल क्यों दूर आकर रहे? हमारे सभी सगे संबंधी सब जान पहचान वाले तो वहां रहते हैं, हमारे पिताजी दादाजी सब वहां रहते थे, हम क्यों इधर आ गए? हमको जरूरत लगी इधर आने की। तो हम पैसे के लिए 1000 मिल आ सकते हैं और आत्मा के लिए नहीं जा सकते क्योंकि आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आत्मा के लिए जाना चाहिए, ऐसी बात। जरूरत लगे तो पाताल में भी आदमी जाता है, हाँ जरूरत लगे तो कहीं कहीं भी जाता है। हमारे भारत के लोग सारे विश्व में फैले हुए हैं, 250 देश है, कितने तो कितने दोस्त, छोटे देश तो ऐसे हैं, छोटे छोटे टापू में हैं, नाम भी अपन लोगों ने नहीं सुना होगा, पर वहां जाकर देखो तो अपना हिंदुस्तान का लोग वहां भी बात को क्यों गए? पैसे के लिए, कमाई अच्छी है ना। जरूरत लगे तो कहीं भी हम लोग जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, अफ्रीका जाते हैं, अनजान देश में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कितना भी परिश्रम उठाते हैं। आत्मा के लिए हमें कुछ करना है कि नहीं करना है, पहले से निर्णय नहीं करना है। करना है तो बात तो गंभीर है। यहाँ आचार्य महाराज ने ये कहा कि अज्ञानी को भी भगवान आत्मा तुझको जानने में आता है, तेरे ज्ञान की दशा में अनुभूति स्वरूप भगवान जानने में आता है। ये अपने घर में भगवान है ऐसा बताया है, हमें उसको खोज करनी है कि ये क्या कहते हैं, हमारे घर में भगवान है और हमने देखा नहीं, ये बात कैसी? हम तो दर्शन करने के लिए मंदिर आते हैं। कहते हैं कि तुम दर्शन तुम्हारे घर में है उसका तो कर, पीछे मंदिर आ तो कोई बात हमको तकलीफ नहीं है, लेकिन पहले यहाँ तो दर्शन कर। तो ये फरमान है, श्री गुरु की ये आज्ञा है। तो कैसा है भगवान? कि अनुभूति स्वरूप भगवान है, उतना ही नहीं कहा। घर में सोना है कैसा है कि जो तेज उसका चकचकाट है वो दिखने में आएगा तुम्हें। सोना तो तेज उसका होता है, सोने का तेज होता है, ऐसा ये भगवान है वो अनुभूति स्वरूप है। अनुभूति मैंने क्या, अनुभूति माने अनुभव की क्रिया को अनुभूति कहते हैं, परिणाम को परिणाम की क्रिया को परिणति कहते हैं, ज्ञान की क्रिया को ज्ञप्ति कहते हैं, कहते कि नहीं? ऐसे अनुभव की क्रिया को अनुभूति कहते हैं। तो अनुभव होता है कि नहीं होता है? किसको अनुभव होता है? आत्मा को होता है। जड़ को अनुभव नहीं होता है, अनुभव तो आत्मा को होता है। तो जिसको अनुभव होता है वो खुद अनुभूति स्वरूप है, ऐसा कहते हैं। गलती क्या कहां होती है कि हमें गर्मी का अनुभव हुआ, हमें मीठापन का अनुभव हुआ या कड़वापन का अनुभव हुआ, ऐसा जो अनुभव होता है वो गलती है हमारी। श्री गुरु कहते हैं कि तुझे इसका कोई अनुभव हो ही नहीं सकता। गुरुदेव बहुत सादी भाषा में ऐसा कहते थे, सरल भाषा में, सादी मैंने सरल भाषा में, कि कोई अज्ञानी भी लड्डू खा सकता नहीं। क्या कहते थे? अज्ञानी भी लड्डू को भोग सकता नहीं। भोगना या अनुभव करना दोनों एक ही बात है, वेदन अनुभूति, भोगना ये तीन शब्द अलग अलग है, एक ही भाव के सूचक तीन शब्द है, भाव तीनों में एक ही है। सभी प्राणियों को, सभी जीवों को अनुभव तो अपना ज्ञान का ही होता है। अनजान आदमी भी कहे कि तेरे घर में संपत्ति है तो हम ना नहीं कहेंगे, एक दफे तो घर में देख लेंगे। हमारा ऐसा बना था, हमारे एक बहनोई जी हैं, छोटी सिस्टर है, उनके घर पे जमीन है, 100-150 बीघा जमीन है अपना बाप दादा का। तो एक आदमी ने बोला, तुम्हारे जो जमीन है वहाँ कुआ है, कहाँ है? कुआ के पास पेड़ हैं, कुआ होता है, पेड़ होता है, खेती में तो वो सब होता ही है। तो पेड़ के, कुआ के पास जो पेड़ है उस पेड़ के नीचे तुम खो, वहाँ बहुत संपत्ति भरी है, सोना निकलेगा, सोना, और सोना इतना निकलेगा उसमें से तुमको इतना इसको देना है, बाकी तुम रख लेना है, मंजूर है? हाँ, इसमें क्या है, अगर सोना निकलता है मुफ्त में तो तुम बोलता है कि 10% इनको भी देना है, तो 90% तो अपने को ऐसा ही मिलता है। बहुत कोशिश किया, क्या करे, रात को मजदूर को ले जाए, दिन को नहीं ले जाए, क्या करे है? बोले कि भाई 15 फीट जाना है तो 15 फीट खोदा, कुछ नहीं निकला, फिर भी इतना विश्वास किया खोदने का, निकला नहीं कुछ। और यहां श्री गुरु कहता कि उतना भी तुझे कुछ नहीं खोदने का, ये तो प्रकट है, ज्ञान की दशा सबों को प्रकट है, खोदने की भी जरूरत नहीं, उतना भी परिश्रम करने की जरूरत नहीं। ज्ञान की दशा में अनुभव होता है, अनुभव कहां होता है? ज्ञान की दशा में होता है। ज्ञान की दशा का दो प्रमुख धर्म है, तत्वानुशील तो पढ़ा होगा, मुझे बहन तो वेदन का बात लिया है, बहुत से धर्म लिए हैं, लेकिन जानना और वेदन करना दो बात तो प्रमुख है, मुख्य बात है। तो ज्ञान जानता भी है और ज्ञान अनुभव भी करता है, दोनों काम ज्ञान करता है। अब किसका अनुभव करता है, अपने आप का करता है या दूसरे का करता है? श्री गुरु ना देते हैं कि दूसरा का तो कर ही नहीं सकता, तो करना चाहे तो भी नहीं कर सकता। अब तो बहुत ध्यान से लक्ष्य दे करके, ध्यान दे करके देखना है, ढूंढना है कि मुझे किसका अनुभव हो रहा है। जिसका अनुभव हो रहा है वो ज्ञान की पर्याय है। और यहां आचार्य महाराज कहते हैं कि ये भगवान आत्मा है। कोई शास्त्र का अध्ययन करने वाले को तर्क हो सकता है कि ज्ञान के पर्याय को आत्मा क्यों कहा, ज्ञान के पर्याय को पर्याय नहीं कह करके आत्मा क्यों कहा? देवचंद भाई को तर्क हो सकता है, शास्त्र पढ़े उनको ज्यादा तर्क होता है, पर्याय को आत्मा क्यों कहा? आए हमारे ये प्रश्न आया है अभी सागर से, कोई भाई दिवासी भाई ने प्रश्न लिखा है, ये 17-18 गाथा में अनुभूति स्वरूप भगवान, भगवान आत्मा जो जानने में आता है, ऐसे कथन में विशिष्टता क्या है? प्रश्न तो उतना ही किया है, कौन सी विशिष्ट बात आचार्य महाराज करना चाहते हैं? कि आचार्य महाराज वो बात करना चाहते हैं कि सभी अज्ञानी जीव ऐसा कहते हैं कि मुझे आत्मा का अनुभव करना है, बाकी है नहीं किया है मैंने, मुझे करना है। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि करना करना क्या है, तुझे हो ही रहा है, करना बाकी नहीं है, तुझे हो ही रहा है, जरा तू गौर से देख तो सही, ध्यान से देख तो सही कि हो रहा है क्या। हो रहा है ज्ञान में ज्ञान का अनुभव, और तू मानता है कि मुझे अनुभव हो रहा है दूसरे पदार्थ का, पुद्गल पदार्थ का, जड़ पदार्थ का, ये बड़ी भ्रांति है। सबसे बड़ी ये भ्रांति है, इस भ्रांति को तू छोड़ दे तो अनुभव होना ये कोई कठिन बात नहीं है। तो आचार्य महाराज ने स्वानुभूति को सरल कर दी है, सुगम कर दी है। वरना राजेश भाई ये समझेंगे कि ये तो हमारा काम नहीं है, हाँ रोज घंटा दो घंटा सिर फोड़ी करता है, इसका काम है देवचंद भाई को करने दो, हाँ ऐसा नहीं है। बहुत सरल कर दिया है इस गाथा में, उतना सरल कर दिया है, उतना सरल कर दिया है आत्मानुभव को, बहुत सरल कर दिया है। ऐसा कोई पूर्वग्रह प्रेजुडाइस नहीं रखना है कि बहुत कठिन बात है, बहुत ऊंची बात है, हमारा काम नहीं है, अभी हम नहीं कर सकते हैं, अभी हम तो बाद में करेंगे, थोड़ा अभ्यास करेंगे, बाद में कुछ थोड़ा समझ में आएगा, बाद में आत्मानुभव होगा, ऐसी बात नहीं है। शास्त्र भी पढ़ने की जरूरत नहीं हो उसको भी अनुभव हो सकता है, अगर ये सरल सीधी बात श्री गुरु की समझ ले तो। ऐसा सुगम कर दिया है। चलो गुलाब भाई ने निकाला तो अच्छा है, 131 गुण निकाला तो अच्छा है। अपने स्वाध्याय घंटा भर इस पर करेंगे, लेकिन घंटा भर स्वाध्याय करना और बात पूरी होगी ऐसा नहीं रखना है। जब बात ही चली है तो हमें इस पर थोड़ा होमवर्क करना है। क्या कि जब आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ही अनुभव में आ रहा है, तो हम उसकी खोज करें कि नहीं करें? अभी भले थोड़ी बातचीत प्रश्न चर्चा घंटा भर कर ले, लेकिन बाद में तो हमारे पास टाइम है पूरा। तो इतना होमवर्क लेके जाएं, ठीक। अभी दूसरे ढंग से स्वाध्याय करें कि आज जो बात समझ में आई उसमें से उतना होमवर्क लेके जाएं कि कल हम क्या करके आए 24 घंटे के बाद, कल वही लेंगे, इसी बात को लेंगे दोबारा। था कल थोड़ा अपने क्या क्या मेहनत किया, किस किस प्रकार से प्रयत्न किया, कैसे खोज किया, क्या मिला खोज में, क्या नहीं मिला, कल इसकी चर्चा करेंगे, ठीक। करने के नहीं करने, सिर्फ ये सुनने की चीज नहीं है। मैं तो साल भर के बाद आता हूं, लेकिन सिर्फ सुनाने के लिए और सिर्फ सुनने की चीज नहीं है, थोड़ा कुछ काम करना है। बातों से पेट नहीं भरेगा, खाने से पेट भरेगा जैसे, वैसे थोड़ा काम करना होगा। बिना काम करे तो एक संतोष कर लेंगे कि चलो स्वाध्याय तो किया, घंटा पर बैठे तो सही, पढ़ा तो सही गुरुदेव के वचन को, ऐसा नहीं। गुरुदेव कहते हैं कि तुम ऐसा करो, देखो पूछो तुम उसको क्यों नहीं जानता है, क्या कहा? एक ही वचन में गुरुदेव क्या कहते हैं कि जब अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा तुझे कोई हम टेंशन में हो गए और खाना खाने को घर पर बैठ जावे, टेंशन लेके आए दुकान से, इनकम टैक्स की रेड, टेलीफोन आ गया कि आपको घर पे खाना खाते खाते ही टेलीफोन आ गया, 5-10 मिनट में रेड आने वाली है, और खाने में ध्यान नहीं रहे, अच्छी से अच्छी चीज बनी हो, टेलीफोन छोड़ दे और खाना जल्दी जल्दी निपटाना हो, और फिर घरवाली पूछे कैसा बना है, आपकी पसंदगी की चीज तो बनाई आज, हाँ क्या कहेंगे? मुझे काम है जल्दी जाने दो, मुझे काम है जल्दी जाने दो, कभी कैसा बना कैसा नहीं बना पूछो ही मत, मेरा ध्यान खाने में नहीं, स्वाद नहीं आएगा। जब हमारा लक्ष्य उड़ गया खाने पर से और लक्ष्य चला गया दुकान पर, तो हमको स्वाद नहीं आएगा। कोई अच्छी भी से अच्छी चीज होगी तो स्वाद नहीं आएगा। तो आचार्य महाराज ने वहां स्पष्ट किया है कि तुझे तेरा आत्मा का अनुभव क्यों नहीं आता है, होता है और क्यों नहीं पता चलता है, इसका स्वाद क्यों नहीं आता है अनुभव का, आस्वाद आना चाहिए शांति का, आस्वाद क्यों नहीं आता है कि तुम्हारा लक्ष्य नहीं है, इसलिए वो बात आगे चलिए वहां समय सार में वो बात चलिए कि तुम्हारा लक्ष्य कहीं और जगह है, उदय पर है, तेरा लक्ष्य जो है वो उदय पर है, आत्मा पर नहीं है। दो ही चीज है, एक अपना आत्मा और एक दूसरी चीज जो उदयमान होती है वो, तो वहां लक्ष्य होने से इसका स्वाद नहीं आता है। इतनी सरल बात है जी, लक्ष्य बदलना है, पहले लक्ष्य बदलना चाहिए, लक्ष्य नहीं बदले तो स्वाद आएगा नहीं, लक्ष्य बदलने से स्वाद आएगा, तो पहले लक्ष्य बदलना है लक्ष्य पूर्वक। और लक्ष्य कब बदलता है कि जब अपना ज्ञान में ज्ञान ही अनुभव में आता है, ऐसा बराबर अपने को स्पष्ट रूप से अपना अनुभव को पकड़ करके जब समझ में आता है तो उस वक्त लक्ष्य होता है। आता है देवचंद भाई, वो बात कहाँ आती है, 751 पत्र के दूसरा बोल है श्रीमद् जी का, स्पष्ट अनुभवान से प्रतीति, वो दूसरा संकेत है जो संकेत का कारण है, संकेत का कारण को संकेत बोला है, वो आता है कि नहीं? तो लक्ष्य भी वेदन से आता है और लक्ष्य होता है तो वेदन आता है, दोनों को इतना संबंध है, दोनों को परस्पर उतना संबंध है। तो वेदन तो चल ही रहा है और लक्ष्य नहीं हुआ है, पहले लक्ष्य होना चाहिए, वेदन से लक्ष्य हो जाएगा और लक्ष्य पूर्वक वेदन आ जाएगा तो अनुभूति हो जाएगी, इसको स्वानुभव सम्यक दर्शन कहते हैं, वो हो जाएगा। और यहां पर्याय को आत्मा इसलिए कहा है कि हम पर्याय को जानते हैं, आत्मा को नहीं जानते हैं, इसलिए पर्याय को आत्मा बोल दिया गुरुदेव। अमृतचंद्राचार्य ने भी वही लिखा है, पर्याय को ही आत्मा बोला है। तो जिसको अज्ञान मिटा करके ज्ञान की प्राप्ति करनी है, ऐसे जीव को ऐसा ही कहना चाहिए, ये आचार्य महाराज जानते हैं। क्या फिर से त्रिकाली ध्रुव आत्मा को आत्मा कहना प्रश्न में उठाता हूं, या एक समय की पर्याय को आत्मा कहना, तो हम लोग कहेंगे कि त्रिकाली ध्रुव को ही आत्मा कहना चाहिए, एक समय के पर्याय को आत्मा नहीं कहना चाहिए, उसको अनात्मा कहना चाहिए, हम ये कहेंगे। जब हम ये बात समझ में, हमारी समझ में आई है, हम सीखे हैं, तो यहां हमको विरोध आ जाएगा, आचार्य महाराज की श्री गुरु की बात पर हमारा विरोध आ जाएगा कि पर्याय को आत्मा क्यों कहते हैं, ध्रुव को आत्मा कहना चाहिए। तो किसी को पर्याय को आत्मा भी कहना चाहिए, ये ध्रुव तक ले जाने की बात है, जब भी ध्रुव तक पहुंचेगा, ध्रुव तक पहुंचने का दूसरा कोई चैनल नहीं है, अनादि से जिसको ध्रुव का लक्ष्य नहीं हुआ है, ध्रुव का अनुभव नहीं हुआ है, ध्रुव का अवलंबन, अनुभव मैंने अवलंबन नहीं हुआ है, पर्याय का ही अनुभव होता है, ध्रुव का अनुभव किसी को होता है ही नहीं, लेकिन अवलंबन पर्याय का आता है, ध्रुव का आता है तो कहते हैं कि ध्रुव का अनुभव हुआ, वास्तव में अनुभव तो पर्याय का ही होता है। तो इसलिए कहेंगे कि जिसको अनुभव करवाना है, ध्रुव का अवलंबन लेना है, उसको पर्याय से ही जाना पड़ेगा, दूसरा कोई इलाज इसमें नहीं, इसलिए ऐसी बात कही है। एक दृष्टांत इसमें लेंगे तो पता चल जाएगा कि 3 साल का घर में बच्चा है जो अपनी लकड़ी, दादाजी की लकड़ी होती है ना चलने के लिए, तो उन पर सवारी करता है, ये मेरा घोड़ा है, क्या करेगा बच्चा खेलने के लिए लकड़ी को घोड़ा बनाएगा, अभी घोड़ा अपना घोड़ा पर घूमता है घर में, अब इसको क्या कहेंगे, तुम्हारा घोड़े को उधर ले जाओ ऐसा कहना पड़ेगा, तुम्हारी लकड़ी को उधर ले जाओ तो समझ में नहीं आएगा उसको, उसको ऐसा कहना पड़ेगा कि तुम्हारा घोड़े को उधर ले जाओ तो ले जाएगा, लेकिन तुम ये कहेंगे, अपन ये कहेंगे कि लकड़ी को तुम इधर ले जाओ तो क्या बोलता है, तुम्हारा घोड़ा है, लकड़ी नहीं है मेरा तो घोड़ा है। तो बच्चे को लकड़ी नहीं बोलना चाहिए, वो उसको घोड़ा बनाया है तो घोड़ा ही बनना उसको बोलना चाहिए। ऐसे अज्ञानी जीव पर्याय को आत्मा मान करके ही अनादि से चलता है, क्या किया करते हैं, सिर्फ पर्याय को आत्मा माना है, क्योंकि त्रिकाली आत्मा कैसा है कुछ पता ही नहीं है इसका, तो इसलिए अज्ञानी की भाषा प्रयोग किया है कि ये जो अनुभूति स्वरूप जो पर्याय है वही भगवान आत्मा है, और इसलिए वहां आत्मा कही कि जैसे अनुभूति की पर्याय है सदृश भाव में आत्म स्वभाव है जो त्रिकाली है, बिल्कुल सदृश भाव में है, वो आत्माकार होने से वहां से उसको आत्मा कहना कोई आपत्ति नहीं है, कोई विरोध नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, उसी को आत्मा कहना ही चाहिए। इसलिए वहां ऐसा कहा है कि तू ऐसे इसको नहीं क्यों जानता है। आचार्य महाराज का यहाँ ऐसा उपदेश है कि तेरा लक्ष्य जो उदय पर है, पर पदार्थ पर है, राग पर है, उस लक्ष्य को उठा करके अपने आप में अनुभव में आने वाली जो ज्ञान की पर्याय है वहां लक्ष्य को ले जा, तो वहां से तुझे स्वभाव कैसा है इसका पता चल जाएगा। देखो आगे क्या कहते हैं कि ज्ञान की दशा में भगवान जानने पर भी अनादि से विकल्प का ताबे, ताबे मैंने क्या कहते हैं, ताबेदारी कहते हैं, आधीन कब्जे में, विकल्प के कब्जे में, विकल्प के आधीन होकर के तुम रहा है, पर ऐसा होकर के रहा होने से तुम भगवान को जानता नहीं है। भगवान है, अनुभव में आ रहा है, लेकिन तुम विकल्प के ताबे, विकल्प के अधीन, इसके कब्जे में पड़ा है, इसलिए तुझे उसका अनुभव होने पर भी नहीं हो रहा है। वो तो रहा ही है लेकिन तुझे उसका पता नहीं है, इसलिए तुझे नहीं हो रहा है ऐसा लगता है, लेकिन वास्तव में तो हो ही रहा है, वास्तव में हो ही रहा है, करने का नहीं है, इसका मतलब ये बात है। मुक्ष को क्या विकल्प उठता है, क्या करें, मैं क्या करूं आत्मकल्याण के लिए, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे शास्त्र प्रवचन करना चाहिए, मुझे पूजा भक्ति करनी चाहिए, मुझे दान देना चाहिए, मुझे व्रत करना चाहिए, क्या करना चाहिए, करने पड़ने का कुछ सवाल नहीं है, ये अनुभव हो ही रहा है, तेरा लक्ष्य है तो उस पर नहीं है, तुम विकल्प के अधीन हो रहा है, यही तकलीफ है, उसकी पकड़ में से छूट जा, विकल्प की पकड़ में से छूट जा तो तेरी अनुभूति की जो पर्याय है वो उसकी धारा चल रही है। अब ये प्रश्न होना चाहिए कि आप कहते हैं कि अनुभूति की पर्याय चल रही है, लेकिन कहाँ चल रही है, ज्ञान की पर्याय जानती है लेकिन अनुभूति कहाँ हो रही है, ये प्रश्न होना जरूरी है। वो जो ज्ञान की पर्याय जानती है वो ज्ञान विशेष है, क्या वो ज्ञान विशेष है, और अनुभूति की पर्याय कौन सी है, वो ज्ञान सामान्य है। वो 15 गाथा में वो विषय आचार्य महाराज ने चलाया है, ज्ञान सामान्य का आविर्भाव करना और ज्ञान विशेष का तिरुभाव करना है, वो बात आगे चल गई है, इसलिए यहाँ वो बात को दोबारा नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ तो कार्य पद्धति सिखानी है, इसलिए वो बात तो आगे चल गई, तो उस बात को यहाँ लेना है। जो ज्ञान विशेष है उसमें ज्ञाकार ज्ञान है, और ज्ञान सामान्य है उसमें ज्ञानाकार ज्ञान है, और जो ज्ञानाकार ज्ञान है उसमें ज्ञान वेदन है। किधर भगवान आत्मा संपत्ति, किधर है भगवान आत्मा, किधर ज्ञान सामान्य में है। अब ये प्रश्न भी होना जरूरी है कि ज्ञान सामान्य के विषय में समझ में तो बात आती है, लेकिन पकड़ने में नहीं आती है। ठीक है ना भाई? समझ में आती है, पकड़ने में नहीं आती है। अब क्या करें इसकी समझ, वो समस्या का क्या करें? परेशानी है, इसलिए तो प्रश्न उठाया। आप तो उठाते नहीं ऐसे फालतू, तो बहुत उठाते, मतलब क्या उठाते नहीं? हाँ, ऐसा नहीं, ये तो मतलब की बात है कि ज्ञान सामान्य पकड़ने में कैसा आवे। समझ में तो आया कि ये ज्ञाकार ज्ञान है वो ज्ञान विशेष है, और जो ज्ञानाकार ज्ञान है वो ज्ञान सामान्य है, लेकिन उसको कैसे पकड़े, कैसे ग्रहण करे? तो वो बात लिखा है बहुत सुंदर ढंग से राजमल जी साहब, कलश टीका जिसने बनाई, 126 नंबर के कलश में उन्होंने ये बात कही है अपनी टीका में, कि कैसे ज्ञान सामान्य में वेदन को पकड़ना। अंतरंग सूक्ष्म अनुभव दृष्टि से, तीन शब्द का प्रयोग किया है, कैसे? अंतरंग सूक्ष्म अनुभव दृष्टि से। तो आप ये कहेंगे कि ये सूक्ष्म अनुभव दृष्टि कैसे करना है, ये प्रश्न भी हो सकता है। तो इसका उदाहरण दिया है आचार्य महाराज ने 15 गाथा में, जैसे अपन सब्जी का दृष्टांत लिया है, लवण का दृष्टांत दिया है। तो हमारे यहाँ कोई 150 आदमी जिमने वाले होते हैं, रसोई बनती है, तो परोसने के पहले उसको क्या करते हैं, टेस्टिंग कर लेते हैं, इसमें नमक बराबर है कि नहीं है। तो अकेला नमक डाला नहीं है, हाँ तो मिर्च भी डाला है, धनिया भी डाला है, खटाई भी डाली है, और हमारे गुजराती में तो थोड़ी मिठाई भी डालते हैं, शक्कर भी डालते हैं, गुड़ भी डालते हैं, बोलते हैं। जब ऐसी ऐसी सब चीज है, फिर भी नमक कम है या ज्यादा है या सब प्रमाण है, तीन में से एक बात डिसाइड करते कि नहीं, निश्चय करते कि नहीं करते? डालने वाला ने डाला, हमने देखा नहीं, और इतना घुल गया है कि कोई नजर तो आता नहीं, चक्षु इंद्रिय से तो नजर में आने वाली चीज नहीं है, तो पानी में घुल जाता है, फिर स्वाद से उसका पता कैसे चलता है? कि हमारा ज्ञान उतना सूक्ष्म होता है कि उस वक्त हम मिर्च को भी नहीं स्वाद में लेते, इस वक्त हम खटाई को भी स्वाद में नहीं लेते, इस वक्त हम धनिया का भी स्वाद नहीं लेते, किसी का भी स्वाद नहीं लेते, सब चीज डाली हुई है। आजकल तो बहुत मसाले डालते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर लक्ष्य करते हैं तो जिस पर लक्ष्य करते हैं उसका स्वाद ले सकते हैं, और दूसरी चीज स्वाद में आती है तो भी लक्ष्य नहीं है तो स्वाद में नहीं आती। कितना अनुभव गोचर दृष्टांत दिया है आचार्य महाराज ने, ये तो रोजाना प्रयोग हो सकता होता है कि जिस चीज पर हमारा लक्ष्य ध्यान रहता है उसका स्वाद हम ले सकते हैं, और उसी जगह दूसरी चीज होते हुए भी हम उसका स्वाद नहीं लेना चाहते तो नहीं ले सकते। तो यहाँ तो वहां तो 10 चीज और हो सकती है रसोई में तो, लेकिन यहाँ तो 2 ही चीज है, जानना और वेदना, ज्ञे और ज्ञान, 2 ही चीज है, तीसरी नहीं है वहां तो। हम उतना लक्ष्य नहीं कर सकते क्या? प्रकट नो सोच तो हम कहते कि वो जो नमक है वो दिख नहीं रहा है, क्या है दृष्टांत, तो इसलिए दिया कि नमक कोई दिख रहा है क्या, दिखता है क्या, नहीं दिखता है तो स्वाद, जब उसका निर्णय करना है तो क्या करना पड़ेगा कि सभी प्रकार के स्वाद को ज्ञान में से हटा करके एक खारापन जो इसका है उस पर हमारा ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, इतना उपयोग को सूक्ष्म करना पड़ेगा कि नहीं, बस तो वो बात हमको आती है जब, तो यहाँ तो वो तो पर पदार्थ है फिर भी हमको आती है, यहाँ तो ज्ञान खुद ही सूक्ष्म दृष्टिकोण करने वाला भी ज्ञान और इसका विषय भी ज्ञान, विषय ही भी ज्ञान और विषय भी ज्ञान, दोनों तो एक ही है, अपने आप में ज्ञान देखता है, इसमें क्या आपत्ति, दूसरे पदार्थ में तो नहीं भी समझ में आवे, लेकिन यहाँ तो कोई दूसरा पदार्थ ही बीच में नहीं है, ऐसी बात है। तो हमारे उस प्रकार की कार्य पद्धति नहीं है, वो इसलिए नहीं है, 15 गाथा में आचार्य महाराज ने इसलिए कहा कि तुम व्यय में लोलुप है, क्या बोले, जो चीज ज्ञान में आती है दूसरी उसमें तेरी लोलुपता उतनी है, तुझे सुख बुद्धि से उतना आकर्षण है कि इसलिए ये ज्ञान तुम्हारी नजर में नहीं आता, ज्ञान सामान्य अनुभूति तुमको पता नहीं चलता, इसका यही कारण है कि तुम्हारी लोलुपता और जगह पड़ी है, तो इस लोलुपता को खत्म करनी है। अब कैसे करें, प्रश्न तो उठना चाहिए कि नहीं, कि वो कैसे करें, कि जब एक चीज को हम तीव्र वेग से तीव्र इच्छा से हम प्राप्त करना चाहेंगे तो दूसरी जगह से हमारी लोलुपता छूट जाएगी। जैसे एक आदमी पैसा कमाने को जाता है तो उसका हर मौज शौक सब खत्म हो जाता कि नहीं हो जाता, 24 घंटा एक ही काम करता है इसका दिमाग, बस पैसा कमाना पैसा कमाना पैसा कमाना, तो कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, फिरने को नहीं जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा, होटल में नहीं जाएगा, रेस्टोरेंट में नहीं जाएगा, सिनेमा देखने को नहीं जाएगा, टीवी नहीं देखेगा, एक ही काम करता है कि नहीं करता है, उसने इंपोर्टेंस दे दिया कि मुझे तो वो चाहिए, तो हर जगह से उसकी लोलुपता हट जाती है कि नहीं हट जाती है। तो ये तो हमारी चीर शांति अनंत शांति के लिए हमारे चाहना अगर जरूरत है आवश्यकता है तो उसकी जिज्ञासा में ही लोलुपता खत्म हो जाती है। मुमुक्षु की भूमिका में आत्मा की खोज करने वाले की तीव्रता हो जाए, खोज की तीव्रता हो जाएगी ना तो और जगह से हट जाएगा, वो उसको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने क्या खाया, मैंने क्या देखा, कहीं ध्यान नहीं रहेगा उसका, चलता रहेगा वो तो चलता रहेगा, विचार करते करते हम पैदल चलते कि नहीं, निर्णय कर दिया घर पे जाना है तो 56 विचार करेंगे रास्ते में, लेकिन घर पहुंच जाते कि नहीं पहुंच जाते, क्योंकि हमारे लक्ष्य में है कि घर इस उसी दिशा में हमारा घर है, उसी जगह पे हमारा घर है, बस एक बात लक्ष्य में ले ली ऑटोमेटिक चाल है वो घर पे ही चलती है। नहीं आ सकते, पहले तो ये बात है कि हमारी सुख शांति की जरूरत है कि नहीं है, ये पहली बात है। क्या बोले, हमारी सुख शांति की हमें जरूरत है कि नहीं है, जैसे हमें दूसरे पदार्थ की जरूरत है वैसे हमारी सुख शांति की हमें जरूरत है कि नहीं है, वो बात अपने आप को पूछने की है। अगर नहीं है जरूरत तो नहीं मिलने वाली, और जरूरत है तो हर जगह से उड़ जाएंगे, मुमुक्षु की भूमिका में उड़ जाएंगे। जैसा है जितना लाभ उतना इंटरेस्ट ज्यादा, क्या व्यापारी को समझ में आ जाएगा कि जितना लाभ उतना इंटरेस्ट ज्यादा, 50-100 में अपन को माथापोड़ी नहीं करनी है, लेकिन 50 लाख मिलता है एक सौदा में तो खाना पीना सब आराम हो जाएगा, सोना भी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं करना, पहले ये काम निपटाना है। देखो एक 190 नंबर का गुरुदेव का वचनामृत है, तत्व निर्णय कैसे करना चाहिए मुमुक्षुओं को, पृष्ठ संख्या 56 56 नंबर के। सिंह चारों ओर घूमते हो, जंगल में फंस गए हो और आवाज आता है कि ये तो सिंह घूमते हैं अगल बगल में, उसका गुरगुराट आता हो तो नींद आएगी क्या कि नहीं आएगी? और कोई पीछे पड़ गया हो पुलिस या गुंडे तो नींद आएगी क्या? बोला कि तुम्हारा मर्डर होने वाला है, तुम्हारे पीछे है कोई लोग ऐसे तुम्हारे पीछे है कि तुम्हारा मर्डर 24 घंटे में हो जाएगा, तो आदमी चैन से सो जाएगा क्या? सोना ही नहीं है, सोएंगे तो पता नहीं चलेगा कौन आ गया, जगते रहेंगे 24 घंटा। ऐसे नींद नहीं है, वैसे तत्व निर्णय न हो क्या? सुखधाम, अनंत सुखधाम किसका निर्णय करना है? अनंत सुख का धाम है उस ऐसा अपना आत्म तत्व है, इसका निर्णय न हो वहां तक आराम से चैन से नींद भी नहीं आनी चाहिए। ये हालात जब हो जाए तब तो निर्णय होगा, और उनको खाना भी है, उनको पीना भी है, उनको सब और जगह हमारा पूरा ध्यान देना है, घर में जहाँ जिसका जो भी उदय है, अपने को बहन लोगों को धंधा में उदय होता है, बहनों को घर में उदय होता है, हमारा पूरा ध्यान देना पड़ता है क्या? अपने लोगों को दुकानदारी में पूरा ध्यान देना पड़ता है और इनको घर में ध्यान देना पड़ता है। वहां जब तक ध्यान वहां है वहां तक तो यहाँ ध्यान रहने वाला नहीं है, ध्यान दो जगह नहीं रह सकता। अब या तो ये प्रश्न करेंगे कि हम दुकान पर ध्यान नहीं दे और नुकसान ही हो जाए तो, हाँ ये प्रश्न तो हमें से होना चाहिए। और ये डर लगता है, क्या डर लगता है? अगर हम धंधा में ध्यान नहीं दे और हम आत्मा पर ध्यान देवे और हमारा ध्यान छूट गया धंधा पर से और धंधा में नुकसानी हो गई तो क्या ध्यान देने वाले को नुकसानी होती ही नहीं क्या? है कहीं करोड़पति भिखारी क्यों हो गया? ध्यान नहीं दिया उसलिए होगा क्या? है वो सब जो धंधा बंदा चलता है वो सब पूर्व कर्म के कारण से चलता है। जितने भी संयोग है जैसा भी जिसको हो, किसको अधूरा तो चलता नहीं, पूरा सारी दुनिया सबको ले लेनी है लेकिन कितना मिलता है? जितना मुकद्दर में है उतना मिलता है। तो ये तो पूर्व कर्म के अधीन है, वर्तमान पुरुषार्थ के अधीन नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि मेरा ध्यान है इसलिए ये काम चलता है, ये गलत निर्णय किया है। तो यहां से ध्यान हटने वाला नहीं और आत्मा में ध्यान आने वाला नहीं, तो ये सब निर्णय स्वाध्याय के दौरान होता है। स्वाध्याय में सब प्रकार के प्रश्न चलते हैं, उसमें ये सब बात चलती है कि हमारा ध्यान कहाँ रखना, कितना रखना, क्यों रखना, रखेंगे तो क्या, नहीं रखेंगे तो क्या, इसका समाधान स्वाध्याय में होता है। वरना तो ये भाई मिटता नहीं, ये भाई मिटने वाला नहीं। ऐसा भी होता है कि हम कल्पना नहीं करते वहां नुकसानी हो जाती है, कल्पना नहीं करते वहां मुनाफा हो जाता है कि नहीं हो जाता है, दोनों बात बनती है कि नहीं बनती है? माल पड़ा है और भाव घट जाता है, पार्लियामेंट में एक कानून बनता है या एक्सपोर्ट के या इंपोर्ट के एक पॉलिसी निकलती है तो हमारा 1 रुपया में 10 पैसा भी हो जाता है, 10 पैसे में से 1 रुपया भी बनता है कि नहीं बनता है? क्या हमारा ध्यान कैसे लगाया, क्या किया हमारा ध्यान, कैसा काम किया? कुछ काम का हमारा ध्यान रहा, कोई काम नहीं। गुरुदेव कहते थे कि जो बुद्धि के बारदान मैंने क्या, ये जो शक्कर के जो होता है ना खाली, उनको करोड़ों रुपये मिलते हैं, और बहुत बुद्धि वाले हैं वो रास्ते पे क्या ठोकर खाते हैं, पैसा नहीं मिलता है, बहुत ठोकर खाते हैं पैसा नहीं मिलता है, क्या कारण? कि इसका जो पूर्व कर्म है उसी के अनुसार होता है, हमें उसको गौण करके क्या करना है? हम ये नहीं कहेंगे कि आप दुकान छोड़ दो, आप घर छोड़ दो,
जंगल में जाओगे तो आत्मा का अनुभव होगा, ऐसा नहीं कहेंगे। आप दुकान पे बैठे रहो, घर पे आते जाते रहो, कोई बात नहीं है, लेकिन ट्रैक बदलना है। क्या? जिस ट्रैक में तुम्हारी गाड़ी चलती है उस ट्रैक में नहीं चलानी है, जिस मेन ट्रैक में स्पीड में चलाना पड़ती है इसकी स्पीड थोड़ी कम कर देनी, साइड ट्रैक में जाना है। तीन चार ट्रैक होते हैं ना रास्ते पे, तो जो साइड ट्रैक पर होती है उसमें धीरे धीरे चले तो कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। साइड बिजनेस कर दो, जो संसार पूरा सारा का सारा संसार है उसको साइड बिजनेस में ले लो, और मुख्य काम है वो आत्मकल्याण का हो जाना चाहिए। जब अनंत काल में मनुष्य भव कभी अनंत काल में एक दफे आता है, कभी बहुत अनंत काल के बाद, तो हमें आत्मकल्याण करने के लिए जो चांस मिला है, जो तक मिली है, उसका सदुपयोग करना है। बाकी जो संसार के काम है वो तो अपने प्रारब्ध के अनुकूल हो जाएगा, थोड़ा बहुत मामूली ध्यान देंगे तो भी चल जाएगा, उसमें तो कोई लंबी चौड़ा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तो काम हो जाएगा आत्मकल्याण का, वरना होने वाला बात का दोबारा कर लेंगे। लेकिन थोड़ा सवाल जवाब तो होगा कल, क्या करके आए, कितना होमवर्क किया है, वो बात थोड़ा लेना है।